ओम शांति। आज शिवरात्रि का विशेष त्योहार हम सभी मना रहे हैं। सारे भारत भर में हर शिव के भक्त आज का दिन विशेष बड़ी श्रद्धा के साथ शिवरात्रि के निमित्त उपवास भी रखते हैं, पूजा करते हैं एवं उसको यूनिक रीति से मनाना। लेकिन ये शिवरात्रि क्यों है? वैसे किसी का भी जन्म दिन होता है, भले रात को 12 बजे भी जन्मे हो तो भी हम जन्म दिन कहते हैं। श्री कृष्ण भी अगर देखा जाए तो रात को 12 बजे जन्मे थे, लेकिन फिर भी हम कृष्ण रात्रि नहीं मनाते हैं। तो शिव के साथ ही भला ये रात्रि शब्द क्यों? तो ये कौन सी रात्रि का संकेत है? ये कोई 24 घंटे के दिन और रात का सवाल नहीं है, लेकिन जब सारे संसार पर अज्ञानता की अंधकार रात अर्थात मनुष्य जीवन में एकदम अंधेरी रात आ जाती है, ऐसे समय पर ही परमात्मा गीता के अपने महावाक्य में जो वायदे दिए हैं उस अनुसार इस संसार पर अवतरित होते हैं। जैसे गीता के अंदर भगवान ने यही कहा कि चारों युगों का एक कल्प होता है और ब्रह्मा के दिन और ब्रह्मा की रात्रि का रहस्य खोलते हुए भगवान ने यही बताया कि सत्ययुग त्रेता ये ब्रह्मा का दिन गाया जाता है, द्वापर और कलयुग ये ब्रह्मा की रात्रि गाई जाती है। जब ब्रह्मा की रात्रि का अंत होता है ऐसे समय पर ही परमात्मा को इस संसार में अवतरित होना पड़ता है और जो वायदा दिया है कि यदा यदा ही धर्मस्य अर्थात जब जब संसार में अधर्म बढ़ जाता है, धर्म के प्रति लोगों का हृदय ग्लानि से भर जाता है, ईश्वर के प्रति लोगों का हृदय ग्लानि से भर जाता है, ऐसे अधर्म का समय जब हो जाता है तभी परमात्मा को इस संसार में अवतरित होना पड़ता है। और अवतरण अर्थात पुनर्जन्म लेने की बात नहीं है, लेकिन अवतरण अर्थात वो प्रकृति को अधीन करके योग माया से इस संसार में प्रकट होते हैं, अपने दिव्य स्वरूप को रचते हैं और इस संसार से अधर्म यानी जो तामस गुण है उन तामस गुणों का संपूर्ण रीति से संहार करके सत धर्म की स्थापना करते हैं और इस तरह से ब्रह्मा की रात्रि का अंत होकर के फिर ब्रह्मा का दिन आरंभ होता है अर्थात सत्ययुग और त्रेतायुग, जहाँ सत धर्म श्रेष्ठ धर्म सनातन धर्म इस संसार में आ जाता है। तो ये बेहद की एक रात्रि की बात है जिस रात्रि में परमात्मा का दिव्य अवतरण होता है। तो 24 घंटे के दिन और रात की बात। दूसरी बात कि ये त्योहार को जब हम मनाते हैं तो इस त्योहार पर अक्सर लोग सारा दिन उपवास रखते हैं और बलि पत्र या बैल पत्र चढ़ा। अब सारा दिन उपवास रखने का भावार्थ क्या है? क्यों उपवास रखते हैं? उपवास शब्द को अगर अलग करें तो उपवास, उप के दो अर्थ होते हैं, उप माना ऊपर, उप माना नजदीक, के ऊपर निवास करने वाले जो परमात्मा है उसके नजदीक मेरे मन का वास रहे, ये है उपवास का भावार्थ। बहुत सुंदर एक कहानी मुझे याद आती है कि कहा जाता कि एक बार एक महात्मा जी एक बन्ने के पास चले गए। बन्ने ने उनका स्वागत किया, भोजन पानी कराया और भोजन पानी करने के बाद जो है वो बैठे। महात्मा जी ने उस वक्त बनिए से एक सवाल पूछा कि आप सारे दिन में भगवान को कितना याद करते हो? बनिए ने कहा, महात्मा जी मैं झूठ तो नहीं बोलूंगा, लेकिन सारा दिन काम धंधे में से फुर्सत ही कहाँ मिलती है भगवान को याद करने की। सारा दिन तो धंधे पर होते हैं तो भगवान को कब याद करेंगे? कलयुग में भगवान को याद करना बहुत कठिन है। महात्मा जी मुस्कुराए, कहा कि कलयुग का समय ही है कि जिसको वरदान है कि जब कलयुग में अगर थोड़ा समय भी निकाल करके भगवान को याद करेंगे तो कई गुना पुण्य जमा हो जाता है। तब महात्मा जी ने उस बनिए से पूछा कि भाई तुम दो टाइम भोजन तो करते होंगे? कहाँ, दो टाइम अच्छी तरह से भोजन करता हूँ। तो महात्मा जी ने पूछा, एक टाइम भोजन में तुम्हें कितना समय लगता होगा? बनिए ने कहा कि एक टाइम भोजन में आधा पौना घंटा तो लगता ही है। तो महात्मा जी ने कहा, अगर हो सकता है तो कुछ त्योहारों के दिन, कोई विशेष दिन होते हैं या सप्ताह में एक दिन अगर रह सकते हो एक टाइम भोजन के बिना, तो एक दिन भोजन के बिना उपवास करके वो आधा पौना घंटा जो तुम्हें मिला उस समय में तुम भगवान को याद करो। अगर कलयुग में इतना आधा पौना घंटा भी तुम समय निकाल सके और ईश्वर को याद कर सके यानी ऊपर निवास करने वाले परमात्मा के नजदीक अगर बुद्धि का वास रहेगा तो भी जीवन सार्थक हो जाएगा, सफल हो जाएगा। बनी ने कहा, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है, तो कर सकता हूँ मैं। महात्मा जी ने कहा, अगर विशेष त्योहारों के दिन तुम दो टाइम भोजन के बिना रह सकते हो तो तुम्हें एक घंटा या डेढ़ घंटा मिल जाएगा, और एक घंटा डेढ़ घंटा भी अगर त्योहार के दिन या विशेष दिनों पर तुम भगवान को याद करोगे तो बहुत पुण्य जमा कर सकोगे। और इस तरह से वहां से बन्ये ने इस बात को जीवन में धारण कर लिया और सप्ताह में एक दिन वो उपवास कर भोजन से परहेज करके अपने मन को उस समय में ईश्वर की ओर लगाना शुरू किया। लेकिन जैसे कहावत है कि भाई सांप तो चला जाता है, निशान पीछे रह जाता है, ठीक उसी प्रकार जो है प्रथाएं चलती आई, कोई न कोई विशेष विधि चलती आई, लेकिन उसके पीछे के भावार्थ को हम कभी समझ नहीं पाए। और इसलिए आज की दुनिया में लोग उपवास तो करते हैं, लेकिन कई लोग फरार खा करके उपवास करेंगे या उपवास है करके एक्स्ट्रा चीजें बना लेंगे कि जिसके कारण उपवास हमारा सही हो। और भगवान को याद करने की बात जहाँ तक की है वो बात तो समाप्त हो गई। उपवास किया है सारा दिन ये सोचते रहते आज हमने उपवास किया है, कब दिन खत्म हो जो खा सके, भूख भी लगी होती, बुद्धि तो है भूख के तरफ, पेट की तरफ अगर जाती रहे तो ऐसे उपवास करने से क्या फायदा होगा। भावार्थ ये कि उपवास का सही मतलब है कि ऊपर निवास करने वाले परमात्मा के नजदीक मेरी बुद्धि का वास रहे। और जब इस भावार्थ के साथ आप करो, भले आप दो टाइम ठीक से भोजन करके फिर भगवान को याद करो, और अधर्म के समय पर अगर थोड़ा भी ईश्वर को याद किया तो उसकी प्राप्ति कई गुना अधिक हो जाती है। दूसरा, जब मनुष्य शिवरात्रि के दिन पूजा पाठ करते हैं तो पूजा करने समय में बेलपत्र चढ़ाते हैं। बेलपत्र तीन पत्ते इकट्ठे होते हैं, डंडे के साथ जुड़ा होता है। भावार्थ ये है कि परमात्मा शिव ब्रह्मा विष्णु महेश के भी रचयिता है, और ये तीन पत्ते अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश के भी रचयिता है। उस परमात्मा के प्रति हम श्रद्धा अर्पित कर रहे हैं जो देवों के भी देव है, महादेव इसलिए उसको कहा गया। पूजा के करते समय बूंद का विशेष महत्व होता है। आप देखेंगे कि शिवलिंग के ऊपर एक कलश होता है जिसके नीचे एक छेद होता है जिसमें से बूंद बूंद टपकती रहती है। और ये बूंद बूंद टपकने का भावार्थ क्या है? बूंद बूंद टपकने का भावार्थ ये है कि नित्य ज्ञान का प्रवाह या ज्ञान की बूंदें हमारी बुद्धि के अंदर चलती रहे। परमात्मा जब इस संसार में आते हैं तो हम सब आत्माओं को ज्ञान प्रदान करते हैं, और जितना ज्ञान की बूंदें या जितनी ज्ञान की बातों को हम अपने मन और बुद्धि के अंदर चलाते रहेंगे तो हमारे मन के अंदर व्यर्थ संकल्प या नेगेटिव संकल्प से हम मुक्त रह सकेंगे। तो इसलिए ये ज्ञान की बूंदों को अपने जीवन में धारण करने की बातें, और उसको धारण करते हुए अपने मन के अंदर से नेगेटिव और व्यर्थ विचारों को निकालने की बात है। आज जब मनुष्य के मन के अंदर अगर व्यर्थ विचार चलते हैं, चलाना कोई नहीं चाहता है, लेकिन कहेंगे क्या करें, मन नेगेटिव सोचने लग गया है, बहुत नेगेटिव विचार आते, बहुत फालतू विचार आते, इन विचारों से अपने आप को मुक्त कैसे करें? कोई भी चीज से मुक्त होना हो तो उसको रिप्लेस करना बहुत जरूरी है। जैसे खाली मटका है, उस मटके से अगर हवा मुझे निकालनी है उसमें पानी भरना पड़ता, पानी भरो तो हवा बाहर। ठीक इसी तरह नेगेटिव और व्यर्थ विचारों को हटाना है तो ऐसे अगर हटाने का प्रयत्न करेंगे तो वो हटेगा नहीं, लेकिन अगर ज्ञान की बातों को मन के अंदर सिमरण करते जाए, ज्ञान की बातों को स्मृति में लाते जाए और एक एक बात के आनंद में अगर हम चले जाए तो ये व्यर्थ विचार, नेगेटिव विचार हमारे मन के अंदर से सदा के लिए दूर हो जाएंगे। तो ज्ञान की बातों को चलाने की बात है। परमात्मा शिव द्वारा जो ज्ञान का सागर है, जो तीनों कालों को जानने वाला ज्ञाता है, त्रिकालदर्शी है, वही आकर के हमें समय की भी पहचान देते हैं और समय की पहचान देते हुए हमें तीनों कालों का ज्ञान दे करके त्रिकालदर्शी भी बनाते हैं, साथ साथ में ज्ञान की बातों का सिमरण करके अपने मन को शुद्ध स्वच्छ बनाने की बात है। ज्ञान की बातों को अमृत कहा जाता है और ये ज्ञान की बातों रूपी अमृत को अगर हम अपने मन के अंदर धारण कर लेते हैं तो मन के अंदर जो विषैलापन है, बुराइयों का, विकारों का, उसको हम सदा के लिए समाप्त कर सकते हैं। तो इसलिए ये बूंद बूंद का महत्व है। तीसरी बात कि विशेष इस दिन के ऊपर लोग जागरण करते हैं, सारी रात जागते हैं, लेकिन जागरण का भावार्थ क्या है? ये कोई 24 घंटे के दिन और रात के जागरण की बात नहीं है, लेकिन जो कलियों की दुनिया ब्रह्मा की रात्रि है, उस ब्रह्मा की रात्रि में जागने की बात है कि ऐसे समय पर अपनी आत्मिक ज्योति जगा करके ये कलियों की दुनिया से हमें अपने आप को पार ले जाना है। तो नित्य रूप से आत्मिक ज्योत जलाते हुए अपने मन को सदा प्रकाशमान रखे, तो इसलिए जागरण करने की विधि अपनाई गई है भक्ति के अंदर। वास्तव में उस रात में तो हम जाग लेते हैं और दुनिया में कोई कैसे जागता है, कोई कैसे जागता है, सोचता जागरण ही करना है। कहां देखो तो कोई पत्ते खेल करके जागरण कर रहा है, कहीं कोई जुआ खेल के जागरण कर रहा है, कहीं कोई रात भर पिक्चर देख करके जागरण कर रहा है। तो एक सेकंड भी परमात्मा की स्मृति तो रही नहीं, भक्ति भावना तो रही नहीं। भक्ति माना ईश्वर के प्रति प्रेम, तो ईश्वर के प्रति प्रेम भाव तो अंदर में रहा नहीं, फिर ऐसा जागरण करने का फायदा क्या? भावार्थ ये है, आत्मिक ज्योति जगाने की बात है जो पूरा कलयुगी अंत तक हमें अपनी आत्मिक ज्योति निरंतर जगा के रखनी है। ज्ञान रूपी दृत उसमें डालते जाइए तो ये आत्मा की ज्योत कभी बुझेगी नहीं, निरंतर जगती रहेगी। और जो ऐसा जागरण करता है, आत्मा की ज्योति को जगाने वाला, वही श्रेष्ठ गति को भी प्राप्त कर सकता है। इसीलिए लोग सोचते हैं जागरण करने से हमें पुण्य प्राप्त होगा, हमारी श्रेष्ठ गति होगी, लेकिन वास्तव में ये कलयुगी रात से जागने की बात है। तो इस प्रकार शिवरात्रि के दिन लोग जागरण करते, उपवास करते, पूजा करते और इस तरह से इसको मना लेते हैं, लेकिन इसके आध्यात्मिक रहस्य को बिना समझे अगर हम मनाते रहेंगे तो ये तो ऐसे ही हो जाएगा जैसे लकीर के फकीर हो गए या अंधश्रद्धा पे चले गए। लेकिन जब सही भाव को समझते हुए अगर हम उसको मनाते हैं तो उसकी आत्मसंतुष्टि भी प्राप्त होती है, खुशी भी प्राप्त होती है और हम जीवन में उन्नति का अनुभव भी कर सकते हैं, जीवन में आगे बढ़ने का अनुभव कर सकते हैं। कई प्रकार के अज्ञान अंधेरे हमारे जीवन से हम नष्ट करके आत्मिक ज्योति जगाते हुए अपने जीवन में प्रकाश का अनुभव कर सकते हैं। और इस तरह हमारी बुद्धि जब प्रकाशमान होने लगती है, विवेक हमारा बढ़ता है ज्ञान के माध्यम से, तो सही वक्त पर हम कोई भी बात को अच्छी तरह समझते हुए उस बात का फैसला कर सकेंगे और जीवन में हमेशा उन्नति का अनुभव कर पाएंगे। तो इसी तरह शिवरात्रि को मनाएं। आइए आज ये यथार्थ अर्थ को समझते हुए शिवरात्रि को अगर हम मनाएंगे तो जरूर हम अपने जीवन को सफल भी कर पाएंगे और आत्मसंतुष्टि का अनुभव करेंगे। तो क्यों नहीं ऐसी शिवरात्रि मनाएं जिससे परमात्मा शिव से हम अपने जीवन का अधिकार प्राप्त करें और अधिकार प्राप्त करते हुए स्वयं को ईश्वर के संतान समझते हुए अनुभव करें कि परमात्मा शिव हमारे माता पिता है और हम उनकी संतान है। वो स्वयं भू है, इस संसार में आते हैं और दिव्य कार्य करते हैं। तो क्यों नहीं हम भी उस परमात्मा की सेवा में सच्चे रूप से उसके मददगार बन जाए, खुदाई खिदमतगार बन जाए और खुदा की खिदमत में अर्थात नए संसार को इस संसार में लाने के लिए, ये संसार को परिवर्तन करने के लिए क्यों नहीं हम भी अपने जीवन रूपी योगदान, अपने समय का कुछ योगदान करें और जीवन को धन्य कर लें। ओम शांति।